एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
आदमी जो सोचता है वो होता नहीं, आदमी जो सोचता है वो होता नहीं, यीशु जो चाहे वो हो आदमी जो सोचता है वो होता नहीं, आदमी जो सोचता है आंधी तूफान भी थम गए जो आज्ञा उसने दी, आंधी तूफान भी थम गए जो आज्ञा उसने दी, अंजीर पे भी सूखा मरा जो आज्ञा उसने दी, क्योंकि वो महान शक्ति और सबका रचने वाला, और सबका रचने वाला। आदमी जो सोचता है वो होता नहीं, आदमी जो सोचता है। जिंदा, दुखी को आनंदित और रोगी को चंगा किया। मुर्दे को जिंदा, दुखी को आनंदित और रोगी को चंगा किया। लहू बहाकर जान लुटाकर हमें पाप से स्वतंत्र किया, क्योंकि वो बड़ा दयालु और सच्चा परमेश्वर है, और सच्चा परमेश्वर है। आदमी जो सोचता है वो होता नहीं, यीशु जो चाहे वो होता है, वो होता है। आदमी जो सोचता है वो होता नहीं, आदमी जो
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर, परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का वचन लेकर आपके सामने आता हूँ। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे जब आप उसके वचनों को सुनते हैं। आइए हम उसके वचनों को सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे जन तेरे पास आते हैं, हमें आशीष दे जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं। मेरे हर एक श्रोताओं के संग हो पिता, तेरे वचन को सुनकर तेरा आशीष पाने सके और तेरे नजदीक आने सके और तेरा रास्ता में चलने सके। पिता उनको बहुतायत से आशीष दे और मेरे संग हो पिता, मुझे तेरा पवित्र आत्मा का साथ दे, तेरा बल दे, तेरा सामर्थ दे, ताकि तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा मैं तेरा वचन को अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकूं, जिसे तेरा महिमा हो। इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आज का संवाद का शीर्षक है तुम्हें शांति मिले। यीशु दो चेलों को अपने जी उठने के बाद इमाउस के रास्ते में मिला था। उनसे बातें करते करते उनके घर तक गया। रास्ते में उन्होंने उन्हें अपने मरने और जी उठने के विषय भविष्यवाणियों से समझाया, परंतु भोजन समय जिसके लिए उसे निमंत्रण किया गया था, उसने अपना हाथ उठाया और आशीष दिया और तुरंत ओझल हो गया उनके जानने के बिना। ये दोनों यीशु की उपासना करना चाह रहे थे। वे इस खबर को दूसरे चेलों को भी बताना चाहते थे, इसलिए वे दोनों यरूशलेम को वापस आए। वे दोनों चेले जब यरूशलेम पहुंचे तो पूर्वी फाटक से नगर में प्रवेश किया, जो फसह पर्व के कारण रात में भी खुला हुआ था। घरों में सन्नाटा और अंधेरा था, परंतु यात्री लोग चांदनी रात में संकरी गलियों से इधर उधर आ जा रहे थे। जिस उपरौटी कोठरी में अपनी मृत्यु से पहले यीशु ने घंटों बिताया था, वे दोनों चेले वहां पहुंचे। वे जानते थे कि उनके भाई लोग वहीं पर मिलेंगे। यद्यपि बहुत देर हो चुकी थी, फिर भी उन्हें मालूम था कि चेले तब तक नहीं सोएंगे जब तक यह ना निश्चित हो जाए कि उनके प्रभु यीशु के मृत शरीर का क्या हुआ। उन्हें कोठरी का द्वार भीतर से बंद मिला। उन्होंने भीतर जाने के लिए द्वार खटखटाया, परंतु कोई उत्तर ना मिला। सब कुछ बिल्कुल खामोश था और तब उन्होंने अपना नाम बताया। दरवाजे की कुंडी सावधानी पूर्वक खोली गई। वे भीतर प्रवेश कर गए और उनके साथ साथ एक और अनदेखा व्यक्ति भी प्रवेश कर गया था। बाहरी जासूसों से बचने के लिए उन्होंने दरवाजे को भीतर से बंद कर लिया। ये यात्री बड़ी आश्चर्यजनक उत्तेजना से भरे हुए थे। जितने लोग कमरे में थे सभी धन्यवाद और स्तुति व प्रार्थना करते हुए कह रहे थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और समोन को दिखाई दिया है। और तब वे दोनों यात्री जो बड़ी शीघ्रता के साथ वहां आए थे अपनी यात्रा की आश्चर्यजनक कहानी बताया कि किस प्रकार से यीशु उन्हें मिला था। उन्होंने अपनी कहानी को जब समाप्त किया तो किसी ने कहा कि वे इस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। यद्यपि यह बात सच है तो बहुत ही अच्छी बात है। और तभी एक व्यक्ति उनके बीच में आकर खड़ा हो जाता है। सभी की आंखें उस अनजाने व्यक्ति पर जाकर ठहर जाती हैं। किसी ने भीतर आने के लिए खटखटाया नहीं था, किसी के पैरों की आहट भी नहीं सुनाई दी थी। चेले लोग चकित हो गए और सोचने लगे कि इसका क्या मतलब है। तब वे एक आवाज सुनते हैं जो बिल्कुल उनके गुरु के समान आवाज थी। साफ और निश्चित शब्द उस आगंतुक के मुंह से निकला, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देखते हैं। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। उन्होंने उसके हाथ और पांव को देखा जिसमें कीलों से छेदे गए निशान दिखाई दिए। उन्होंने उसकी आवाज को भी पहचान लिया। ऐसी आवाज किसी दूसरे की कभी नहीं सुना था। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति ना हुई और आश्चर्य करते थे तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी मछली का टुकड़ा दिया, उसने लेकर उनके सामने खाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। अब अविश्वास की जगह विश्वास और आनंद ने ले लिया था और ऐसा महसूस करने लगे जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। उन्होंने अपने जी उठे उद्धारकर्ता को पहचान लिया था। यीशु के जन्म के समय स्वर्गदूत ने घोषित किया था, पृथ्वी पर शांति और मनुष्यों का भला हो। और अपने जी उठने के बाद जब पहली बार चेलों से मिला तो मुक्तिदाता ने उन्हें संबोधित करते हुए आशीष भरा शब्द बोला, तुम्हें शांति मिले। जो भी मनुष्य संदेह और भय के बोझ से दबा हुआ है उसे शांति देने के लिए यीशु सदा तैयार है। वह केवल इंतजार करता है कि हम अपने दिल के दरवाजे को खोले और उससे कहें, हमारे साथ रह। वह स्वयं कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रकाशित वाक्य 3:20। यीशु का पुनरुत्थान जितने भी सोए गए हैं उनके अंतिम पुनरुत्थान का एक उदाहरण था। जी उठे मुक्तिदाता का चेहरा, उसका स्वभाव, उसकी बोली, ये सभी चेलों की जानी पहचानी थी। जिस प्रकार से यीशु मरे हुओं में से जी उठा था तो जो लोग उसमें सो रहे हैं वे भी फिर से उसी प्रकार से जी उठेंगे। जिस प्रकार से चेलों ने यीशु को पहचान लिया था उसी प्रकार से हम भी अपने मित्रों को पहचानेंगे। हो सकता है कि वे इन जीवन में लूल्हे लंगड़े रहे हों, बीमार रहे हों या शरीर का कोई अंग टेढ़ा मेढ़ा कटा फटा रहा हो, परंतु जब फिर से जी उठेंगे तो उनका शरीर संपूर्ण होगा, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। फिर भी उस महिमामय शरीर में उनकी पहचान वैसे ही रहेगी जैसे वे थे। पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ, कहता है 1 कुरिन्थियों 13:12। यीशु के चेहरे से जो प्रकाश चमक रहा था वैसे ही प्रकाश में हम अपने प्रियजनों को पहचानेंगे। जब यीशु अपने चेलों से मिला तो उसने उन्हें अपने उन शब्दों को याद दिलाया जो उसने अपनी मृत्यु से पहले उनसे कहा था कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं सब पूरी हों। तब उसने पवित्र शास्त्र समझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यों लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। चेले लोग अपने कार्य क्षेत्र और कार्य पद्धति को महसूस करना आरंभ कर दिए। मसीह ने जिस आश्चर्यजनक सच्चाई को उन्हें सौंपा है, सारे संसार में उन्हें जाकर उसे प्रचारित करना है। उसके जीवन की घटनाएं, उसकी मृत्यु और फिर उसके जी उठने और जिन भविष्यवाणियों में इन घटनाओं के होने के संकेत दिए गए हैं, परमेश्वर के आज्ञाओं की पवित्रता, उद्धार के योजना का रहस्य, पाप को मिटाने की यीशु की सामर्थ, इन सब बातों के वे गवाह थे और उन्हें इन बातों को दुनिया को बताना था। उन्हें शांति के सुसमाचार को और पश्चाताप के द्वारा उद्धार तथा मुक्तिदाता की शक्ति को सारे जगत में प्रचार करना था। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करोगे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। अभी तक पवित्र आत्मा पूर्ण रूप से सार्वजनिक नहीं किया गया था। मसीह अभी तक महिमामय नहीं हुआ था। जब तक मसीह स्वर्ग को नहीं चला गया था, तब तक पवित्र आत्मा बहुतायत से नहीं दिया गया था। और चेले लोग जब तक बहुतायत से पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक संसार में जाकर सुसमाचार का प्रचार नहीं कर सकते थे। परंतु इस समय एक विशेष उद्देश्य के लिए पवित्र आत्मा दिया गया था। इससे पहले कि चेले लोग अपने लिए सौंपे गए कार्य को आरंभ करें, मसीह ने उन पर अपना आत्मा फूका। वह उन्हें अत्यंत ही पवित्र भरोसा सौंप रहा था और उन पर यह प्रभाव डालना चाह रहा था कि बिना पवित्र आत्मा की सहायता से यह कार्य पूरा नहीं हो सकता है। पवित्र आत्मा आत्मिक जीवन के लिए प्राण है। पवित्र आत्मा का दिया जाना मसीह के जीवन को दिया जाना है। जो इसे प्राप्त करता है वह मसीह के सारे गुणों को प्राप्त करता है। इस प्रकार से केवल वही लोग जो परमेश्वर द्वारा शिक्षित किए गए हैं, जिनके भीतर आत्मा के कार्य करने की शक्ति प्रदान की गई है और जिनके जीवन से मसीह का जीवन दिखाई देता है, वही कलीसिया की ओर से सेवकाई करने के लिए चुने हुए प्रतिनिधि हैं। मसीह ने कहा, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। यहाँ पर मसीह ने किसी को यह आजादी नहीं दिया है कि वह किसी दूसरे का न्याय करे। पहाड़ी उपदेश में उसने ऐसा करने से मना किया था। यह तो केवल परमेश्वर का अक्षुण अधिकार है। परंतु एक नियमबद्ध संगठित कलीसिया में सदस्यों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है। जब कोई पाप कर बैठता है तो कलीसिया का कर्तव्य हो जाता है कि उस व्यक्ति को चेतावनी दे, सलाह दे और यदि संभव हो तो वापस कलीसिया में शामिल कर ले। प्रभु कहता है, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। दूसरा तिमोथियस 4:2। गलती करने वाले के साथ सच्चाई से व्यवहार करें। पाप की क्षमा केवल मसीह की योग्यता के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। किसी भी व्यक्ति को, व्यक्तियों के किसी भी समूह को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह आत्मा को अपराध से मुक्त कर दे। मसीह ने अपने चेलों को सिखाया था कि वे जाकर उसके नाम से पाप के क्षमा के लिए संसार में प्रचार करें, परंतु वे अपने आप में अधिकारी नहीं थे कि पाप के एक दाग को भी मिटा सकें। केवल यीशु के नाम में ही वह सामर्थ है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें, कहता है प्रेरितों के काम 4:12। जी उठने के बाद जब पहली बार यीशु अपने चेलों से ऊपरी कोठरी में मिला था, तब उस समय थोमा वहां पर दूसरे चेलों के साथ नहीं था। उसने दूसरों से इस सुसमाचार को सुना तथा बहुत से प्रमाण भी उसने देखा था कि यीशु जी उठा है, परंतु अविश्वास और संदेह से उसका हृदय भरा हुआ था। जब चेलों ने उस जी उठे मुक्तिदाता के आश्चर्यजनक रूप से प्रकट होने की घटना को उसे बताया तो वह और भी निराशा की गहराई में उतर गया। यदि वास्तव में यीशु मरे हुओं में से जी उठा है तो अब इस धरती पर राज्य करने की कोई आशा बाकी ना रही। और यह बात उसके सम्मान को आघात पहुंचाया कि उसका गुरु उसे छोड़कर बाकी दूसरे सभी चेलों को दिखाई दिया था। उसने ठान लिया कि वह विश्वास नहीं करेगा और पूरे एक सप्ताह तक वह अपनी अधमता भरी चिंता में डूबा रहा। ऐसा लगता था कि उसके भाइयों को जितनी खुशी, आशा और विश्वास हो रहा था, इसका बिल्कुल उल्टा थोमा के साथ था। इस अवधि में उसने बार बार कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी अंगुली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं प्रतीति नहीं करूंगा। वह अपने भाइयों की आंखों से नहीं देखेगा या विश्वास करेगा जो केवल उनके कहने पर निर्भर कर रहा था। वह अपने प्रभु को बहुत अधिक प्यार करता था, परंतु उसने अपने मन और हृदय में डाह और अविश्वास को स्थान दे दिया था। कई चेलों ने उस उपरौठी कोठरी को अपना अस्थाई घर बना लिया था और शाम को थोमा को छोड़ सभी लोग एक साथ वहां पर जमा होते थे। एक शाम को थोमा ने ठान लिया कि वह वहां पर जाकर दूसरे चेलों से मिलेगा। विश्वास न करते हुए भी उसमें एक क्षीण आशा थी कि यदि यह समाचार सच है तो अच्छा है। जब चेले शाम का भोजन करने के लिए बैठे तो आपस में मसीह द्वारा भविष्यवाणी में बताई गई घटनाओं के विषय में चर्चा कर रहे थे और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। थोमा की ओर मुड़कर यीशु ने कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लगाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। ये बातें यह जाहिर करती हैं कि वह थोमा की सोच विचार और बातों से वाकिफ था। संदेह करने वाला चेला जानता था कि उसके साथियों में से कोई भी पूरे सप्ताह यीशु से नहीं मिला था। उसके इस अविश्वास की बातों को गुरु से किसी ने नहीं बताया था। उसने अपने सामने खड़े हुए को अपना प्रभु करके पहचान लिया। अब उसे और अधिक प्रमाण की कोई आवश्यकता ना रही। उसका हृदय खुशी से उछलने लगा और वह यीशु के पैरों में लौट गया और कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। उसके स्वीकार कर लेने को यीशु ने मान लिया, परंतु बड़ी शालीनता के साथ उसके अविश्वास पर उसे झिड़का। तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यदि उसने अपने भाइयों की कही गई बातों पर विश्वास कर लिया होता तो थोमा के विश्वास पर मसीह अत्यंत प्रसन्न हुआ होता। अब यदि यह संसार थोमा के नमूने पर चले तो कोई भी उद्धार पर विश्वास नहीं करेगा। जितने भी लोग मसीह को ग्रहण करते हैं वे दूसरों की गवाही पर ही ऐसा करते हैं। बहुतों ने जो अपने आप को यह कहते हुए शंका का एक बहाना बना लिया है कि जो प्रमाण थोमा के साथियों ने दिया था यदि वैसा ही हमें मिले तो हम तो विश्वास कर लेंगे, वे इस बात को महसूस नहीं करते कि उनके पास केवल प्रमाण ही नहीं है बल्कि उससे भी बढ़कर है। बहुत से लोग थोमा के समान सभी शंकाओं का समाधान हो जाने का इंतजार करते हैं। वे अपनी इच्छाओं को कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे। वे धीरे धीरे पक्के अविश्वासी हो जाते हैं जो अपने आप को सदा ही अंधेरे पक्ष की ओर रखते हैं और बुड़बुड़ाते तथा शिकायत ही करते रहते हैं, पर वे जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। वे शंका के बीज को बो रहे हैं और उन्हें संदेह की ही फसल काटनी पड़ेगी। जिस समय उन्हें विश्वास और प्रतीति करने की अधिकतम आवश्यकता होगी उस समय वे लोग अपने आप को आशा और विश्वास में कमजोर पाएंगे। थोमा के साथ जैसा व्यवहार यीशु ने किया था वह उसके अनुयायियों के लिए एक सीख है। उसका उदाहरण यह बताता है कि जिनका विश्वास कमजोर है और जो संदेह को प्रथम स्थान देते हैं उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। यीशु थोमा पर क्रोधित होकर उसे भला बुरा नहीं कहा और ना ही उसने उसके साथ वाद विवाद किया। संदेह करने वाले पर उसने अपने आप को प्रकट कर दिया। थोमा को अपने विश्वास को प्रकट करने के लिए कोई उचित कारण नहीं था, परंतु यीशु अपने उदार प्रेम और दूसरों के प्रति भला सोचने के कारण हर बाधा को तोड़ डाला था। अविश्वासी को वाद विवाद से कभी नहीं जीता जा सकता है, बल्कि वह स्वयं को बचाने का प्रयास करता है और नित नए बहाने ढूंढता रहता है। परंतु आइए यीशु के प्रेम और दया में होकर क्रूस पर बलिदान हो गए मुक्तिदाता को दूसरों के सामने प्रकट करें और तब बहुत से ना चाहने वाले लोग भी थोमा के समान स्वीकार करते हुए कह उठेंगे, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरी उपासना करते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम इस सुंदर वचन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा और हमारे बीच में प्रकट हुआ। यद्यपि थोमा इसे शुरू में विश्वास नहीं किया, बाद में जब यीशु उसे प्रकट हुआ वह उसे अपना प्रभु और अपना परमेश्वर कह के मान लिया, अपनाया और ग्रहण किया, इसको सबको प्रकट किया। पिता परमेश्वर, हम भी अपने जीवन से दूसरे लोगों को यह प्रकट करें कि तू जिंदा परमेश्वर है, तू हमसे प्रेम करता है और सबको चाहता है, सबको अपने पास बुलाता है और सबको उद्धार करना चाहता है। पिता परमेश्वर, सबों को आशीष दे जो तेरे वचनों को सुन रहे हैं, और मुझे भी आशीष दे पिता कि मैं तेरे वचनों को बताते रहूं। हम सबों को तेरे पवित्र आत्मा का आशीष दे और तेरे पास ला और तेरे राज में बचा ले पिता परमेश्वर। इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833221 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudaventist.org।
मैं हूँ गौरव चौहान
और मैं हूँ सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।